एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
आज हम राजनीति की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन शायद रोज की खबरों वाली बहसों से थोड़ा हटकर।
हाँ, आज हम राजनीति के असल मतलब को, उसके असली रोल और कह सकते हैं मकसद को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक दार्शनिक, केनेथ मिनोग।
हाँ, उनकी किताबें हैं पॉलिटिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और पॉलिटिक्स। इनके विचारों पर आज बात होगी।
और ये किताबें मतलब राजनीति को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखती हैं।
सही कहा। और ये नजरिया आज के माहौल में, जहां राजनीति अक्सर बस सत्ता की लड़ाई या फिर शोर शराबा लगती है, वहां बहुत जरूरी हो जाता है।
हाँ, मिनोग हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा नाजुक चीज है।
ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है।
नहीं, बल्कि असहमतियों के साथ शांति से जीने का एक खास तरीका है।
तो अगर कोई रोजमर्रा की इस राजनीतिक खींचतान से आगे बढ़कर ये समझना चाहता है कि राजनीति का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए,
और ये तानाशाही या फिर वो जो कट्टर विचारधाराएं होती हैं, उनसे कैसे अलग है?
हाँ, तो आज की ये चर्चा शायद उनके काम आए।
चलिए फिर शुरू करते हैं केनेथ मिनोग के विचारों की इस दुनिया में गोता लगाना।
तो सबसे पहले, ये केनेथ मिनोग थे कौन? 1930 में जन्मे, 2013 में गुजरे।
ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे, लेकिन अपना ज्यादातर अकेडमिक जीवन उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में बिताया।
हाँ, और उन्हें एक रूढ़िवादी और शास्त्रीय उदारवादी यानी क्लासिकल लिबरल विचारक माना जाता है।
लेकिन वो आजकल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे नहीं थे जो सिर्फ आंकड़ों या चुनावों का विश्लेषण करें।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनोग ज्यादातर विचारों के इतिहासकार थे। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि हमारी राजनीतिक सोच की जड़ें कहाँ हैं, उसकी फिलोसॉफिकल बुनियाद क्या है।
उनकी एक और मशहूर किताब है द लिबरल माइंड, जिसमें उन्होंने आधुनिक उदारवाद की आलोचना भी की थी।
हाँ, और उनकी खासियत ये थी कि वो मुश्किल अकादमिक बातों को भी आम भाषा में समझा पाते थे।
सही।
वो राजनीति को सिर्फ एक किताबी विषय नहीं मानते थे।
नहीं, वो उसे एक तरह की इंसानी गतिविधि मानते थे, एक सभ्य बातचीत का तरीका,
जिसे बचाए रखना जरूरी है।
हाँ, ऐसा नहीं कि कोई मशीन चलाना सीख लिया, बल्कि इंसानों के बीच का एक जटिल रिश्ता है ये।
बिल्कुल। और सोचिए, उन्होंने 20वीं सदी की कितनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखी होगी।
विश्व युद्ध, शीत युद्ध, लोकतंत्र का फैलाव, ये सब।
हाँ, तो इन सब अनुभवों ने उनके नजरिए को और पैना किया होगा।
बिल्कुल।
उनका एक बड़ा मकसद था जिसे वो राजनीतिक परिपक्वता कहते थे, यानी पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन, उसे बढ़ावा देना।
मतलब
बिना किसी विचारधारा के बहकावे में आए असलियत को समझना, राजनीतिक मामलों पर स्पष्ट रूप से सोचना।
अच्छा, तो उनकी किताबों का निचोड़ क्या है पर? मेन आर्ग्यूमेंट?
मिनोग का सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि राजनीति कोई हवा पानी जैसी चीज नहीं है जो हमेशा हर जगह होती है। ये इंसानों की एक खास सीखी हुई गतिविधि है, और ऐतिहासिक रूप से देखें तो काफी दुर्लभ भी,
जिसका आविष्कार हुआ कह सकते हैं प्राचीन ग्रीस में।
हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप नहीं उगाई।
तो इसका मुख्य काम या रोल क्या है?
देखिए, एक आजाद समाज है जहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं।
तो मतभेद तो होंगे,
जाहिर है। तो राजनीति का काम है इन मतभेदों को बिना हिंसा के, बिना जबरदस्ती के संभालना, मैनेज करना।
यही इसका बुनियादी मकसद है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मिनोग राजनीति को उसके दो सबसे बड़े दुश्मनों से बिल्कुल अलग करके देखते हैं।
हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। पहला दुश्मन
तानाशाही,
यानी डिस्पोटिज्म,
जहाँ सिर्फ ऊपर से हुक्म आता है और नीचे वाले मानते हैं।
कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बहस नहीं, बस डर और हुक्म।
सही। और दूसरा दुश्मन है विचारधारा।
ये तानाशाही से तो अलग है।
हाँ, अलग है, लेकिन मिनोग के हिसाब से उतनी ही खतरनाक। विचारधारा एक ऐसा सच या आदर्श समाज का नक्शा पेश करती है जिसके आगे सारे मतभेद, सारे समझौते बेकार हो जाते हैं।
मतलब वो कहती है बस एक ही रास्ता सही है, बाकी सब गलत।
हाँ, बातचीत की गुंजाइशी खत्म कर देती है।
तो मिनोग के लिए सच्ची राजनीति इन दोनों के बीच की एक बहुत नाजुक सी जगह है।
बिल्कुल। इसे पनपने के लिए खास तरह का माहौल चाहिए, कुछ नियम, कुछ संस्थाएं और लोगों में एक खास तरह की समझ भी।
ये सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं है।
नहीं, ये हमारे अंदर की कश्मकश का आईना भी है। आज़ादी और व्यवस्था के बीच अपनी इच्छाओं और समाज की ज़रूरतों के बीच का तनाव।
और उनका लक्ष्य यही है कि हम सब में वो राजनीतिक परिपक्वता आए।
हाँ, मतलब हम ये समझे कि राजनीति में कभी कोई एक परफेक्ट हल नहीं मिलेगा।
हमेशा समझौते करने पड़ेंगे।
बिल्कुल, हमेशा चीज़ें थोड़ी अधूरी रहेंगी। किसी जादुई समाधान या विचारधारा के पीछे भागने की बजाय हकीकत को समझना और उसके साथ काम करना सीखें।
चलिए तो इस सफर की शुरुआत करते हैं प्राचीन ग्रीस से। मिनो कहते हैं राजनीति का जन्म वहीं हुआ।
हाँ, ग्रीक पॉलिस यानी शहर राज्य। वहाँ पहली बार ये क्रांतिकारी विचार आया कि लोग मिलकर आपसी बहस और सहमति से अपने मामले चला सकते हैं,
किसी राजा या पुजारी के हुक्म से नहीं।
नहीं, ये तानाशाही से कितना अलग था।
बिल्कुल, और यहीं से नागरिक यानी सिटीजन का आइडिया आया।
हाँ, यानी वो इंसान जो सिर्फ हुक्म मानने वाली प्रजा नहीं बल्कि शहर के सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदार है।
और उन्होंने निजी जिंदगी, जिसे वो ओइकॉस कहते थे, और सार्वजनिक जीवन यानी पॉलिस के बीच एक फर्क किया।
सही, राजनीति पॉलिस की चीज थी, और सबसे जरूरी बात नोमोस यानी कानून का शासन।
कानून सबसे ऊपर, राजा पर भी प्रजा पर भी।
हाँ, तो ये राजनीति के शुरुआती कदम थे, बातचीत, भागीदारी और कानून का राज।
वाह, तो ग्रीस ने राजनीति की आत्मा दी, उसका विचार दिया, लेकिन मिनोक कहते हैं कि रोमनों ने उसे एक मजबूत ढांचा या शरीर दिया।
हाँ, रोमन लोग कानून बनाने और संस्थाएं खड़ी करने में उस्ताद थे।
उनका वो रेस पब्लिका का आइडिया कमाल का था।
बिल्कुल, इसका मतलब था सार्वजनिक वस्तु या राष्ट्रमंडल, यानी राज्य अब किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं रहा।
वो एक अलग कानूनी इकाई बन गया, ये एक बड़ा बदलाव था।
हाँ, और उनका कानून बहुत व्यवस्थित और व्यवहारिक था, जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक जोड़े रखा।
और इसी कानूनी ढांचे ने आगे चलकर आधुनिक राज्य की नींव रखी। नागरिकता, अधिकार, ये सब विचार वहीं से आए।
सही कहा, रोम ने दिखाया कि राजनीति को टिकाऊ कैसे बनाया जाए।
इसके बाद आती है ईसाइयत, जिसका यूरोप की राजनीतिक सोच पर बड़ा गहरा और कुछ हद तक उलझा हुआ असर पड़ा।
हाँ, मिनो इशारा करते हैं कि ईसाइयत ने इंसान की वफादारी को दो हिस्सों में बांट दिया,
एक ईश्वर के प्रति, दूसरी राजा या राज्य के प्रति। मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, इस एक विचार ने बहुत कुछ बदल दिया।
बिल्कुल, इसने राज्य की ताकत पर एक अनदेखी लगाम लगा दी। एक अलग दायरा बन गया इंसान की आत्मा, उसका विश्वास, उसका मोक्ष, जो राजा के कंट्रोल से बाहर था।
तो इसने अनजाने में ही सही राज्य की शक्ति को सीमित किया और व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया।
हाँ, ये सोच के इंसान सिर्फ एक राजनैतिक पुर्जा नहीं है, उसका एक अंदरूनी जीवन और नैतिक मूल्य भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई।
और चर्च और राज्य के बीच जो ये खींचतान चली,
उसने पश्चिमी दुनिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काफी जगह बनाई। सत्ता एक जगह सिमट कर नहीं रह पाई।
फिर आया पुनर्जागरण और सुधार का दौर।
हाँ, और मिनोक्स के अनुसार इसी समय ग्रीस की नागरिक भागीदारी, रोम का कानून और संस्थाएं, और ईसाइयत का व्यक्तिवाद और सीमित सरकार का विचार,
ये सब धागे मिलकर आधुनिक यूरोपीय राज्य का ताना बाना बुनने लगे।
बिल्कुल, ये कोई सीधी रेखा नहीं थी बल्कि इन सबका एक जटिल मिश्रण था।
और इसी दौर में मैकियावेली जैसे विचारक आए,
जिन्होंने कहा कि राजनीति को आदर्शों से नहीं बल्कि जैसी वो है उसी रूप में देखो, यानी शक्ति का खेल।
फिर हॉब्स आए, जिन्होंने कहा कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत संप्रभु शासक जरूरी है, वरना सब आपस में लड़ मरेंगे।
और फिर लॉक आए, जिन्होंने तल्क दिया कि सरकार का असली मकसद तो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना है।
और इस तरह धीरे धीरे आधुनिक राज्य बना।
हाँ, जो अपने इलाके में सबसे ऊपर संप्रभु था और किसी राजा की व्यक्तिगत जागीर नहीं, अव्यक्तिक था।
ये पुराने साम्राज्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर था,
लेकिन साथ ही कम से कम सिद्धांत में इसमें व्यक्ति की आजादी की रक्षा का वादा भी शामिल था।
अब आधुनिक राजनीति को और गहराई से समझने के लिए मिनोग कुछ बुनियादी फर्क बताते हैं जो आज भी बहुत काम के हैं।
हाँ, पहला फर्क है शक्ति यानी पावर और अधिकार यानी अथॉरिटी के बीच।
शक्ति मतलब किसी से अपनी बात मनवाने की क्षमता, चाहे जोर जबरदस्ती से ही क्यों ना हो।
सही, लेकिन अधिकार का मतलब है बात मनवाने का हक, जो कानून, परंपरा या लोगों की सहमति से मिलता है।
मिलो कहते हैं कि असली राजनीतिक व्यवस्था अधिकार पर टिकी होती है, नंगी शक्ति पर नहीं।
बिल्कुल, तानाशाही शक्ति का खेल है, राजनीति अधिकार का?
ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। दूसरा अहम विचार,
संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब है कि राज्य की ताकत असीमित नहीं है,
वो कुछ बुनियादी कानूनों या नियमों से बंधी हुई है, चाहे वो लिखा हुआ संविधान हो या पुरानी परंपराएं।
हाँ, और तीसरा है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी,
यानी राज्य से अलग लोगों के अपने बनाए हुए संगठन।
बिल्कुल, परिवार, क्लब, धार्मिक समूह, व्यापार संघ वगैरह, ये संगठन भी राज्य की ताकत पर एक तरह का अंकुश लगाते हैं
और लोगों को अपनी जिंदगी जीने के तरीके देते हैं।
सही कहा।
और लोकतंत्र, उसका क्या? वादा तो बहुत लुभावना है, जनता का राज।
हाँ, लेकिन मिनोग यहाँ भी थोड़ा आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि बहुमत अपनी मनमानी अल्पमत पर थोपने लगे,
जिसे बहुमत की तानाशाही कहते हैं।
हाँ, इसलिए मिनोग के अनुसार कामयाब लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करा देना काफी नहीं है,
उसके लिए खास तरह की आदतें भी चाहिए लोगों में।
बिल्कुल, जैसे दूसरों की राय सुनना, सहनशीलता रखना, समझौते के लिए तैयार रहना, और साथ ही मजबूत संस्थाएं भी जरूरी हैं, जैसे आजाद अदालतें, निष्पक्ष मीडिया वगैरह।
अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे मिनोग राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, बल्कि एक तरह का जहर, विचारधारा।
हाँ, आइडियोलॉजी, ये उनके विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। वो इसे एक आधुनिक घटना मानते हैं जो मूल रूप से राजनीति के खिलाफ है।
ध्यान दें, विचारधारा सिर्फ राजनीतिक विचारों का झुंड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, विचारधारा उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज होने का दावा करती है। ये एक पूरी दुनियावी समझ पेश करती है
जो कहती है कि उसने इतिहास का छुपा हुआ असली सच पकड़ लिया है
और भविष्य के आदर्श समाज का नक्शा उसी के पास है।
इसकी पहचान क्या है फिर?
ये दुनिया को बहुत सरल खांचों में बांट देती है, अच्छे लोग बनाम बुरे लोग, शोषित बनाम शोषक, नायक बनाम खलनायक।
और इसका लक्ष्य होता है सारे मतभेदों को मिटाकर एक रूप, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना।
हाँ, ये राजनीतिक मसलों को कैसे देखती है? ये उन्हें या तो तकनीकी समस्या मानती है जिसका कोई एक सही वैज्ञानिक हल होगा,
या फिर एक नैतिक जंग जिसमें एक पक्ष पूरी तरह सही और दूसरा पूरी तरह गलत है।
बिल्कुल, दोनों ही सूरतों में बातचीत, मोलभाव, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
मिनोग की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि जब विचारधारा राजनीति पर हावी हो जाती है तो वो राजनीति के असली रोल को ही खत्म कर देती है।
हाँ, राजनीति का काम क्या था? मतभेदों को संभालना। विचारधारा क्या चाहती है? मतभेदों को जड़ से मिटा देना।
ऐसे में समझौता करना गद्दारी लगने लगता है।
सही, जो आपसे असहमत है वो सिर्फ अलग राय रखने वाला नहीं बल्कि दुश्मन बन जाता है।
और राजनीति का मकसद शांति से साथ रहना नहीं बल्कि पूरी तरह जीत हासिल करना बन जाता है।
हाँ, ये राजनीति को जंग का मैदान बना देती है।
तो चलिए, मिनोग के गहरे विचारों से निकले कुछ खास संदेशों को समेटते हैं। पहला थीम जो मुझे बहुत जरूरी लगा, राजनीति कोई प्राकृतिक चीज नहीं
बल्कि एक खास, ऐतिहासिक और बहुत नाजुक उपलब्धि है।
हाँ, ये ग्रीस में शुरू हुई। इसका असली काम मतभेदों को शांति से संभालना है, ना कि उन्हें मिटाकर कोई काल्पनिक एकता कायम करना।
आजकल की ऑनलाइन डिबेट्स या टीवी बहसों को देखें तो ये बात कितनी सही लगती है ना?
बिल्कुल, कैसे जरा सी असहमति लड़ाई में बदल जाती है। दूसरा थीम, राजनीति और तानाशाही के बीच का बुनियादी फर्क।
राजनीति में नागरिक, कानून का राज, बहस,
और तानाशाही में सिर्फ मालिक और गुलाम, मनमाना हुक्म और डर का माहौल।
मिनोग हमें ये भी याद दिलाते हैं कि आजादी और व्यवस्था के बीच हमेशा एक तनाव बना रहेगा।
हाँ, इसे खत्म करने की कोशिश खतरनाक है, इसे सिर्फ संभाला जा सकता है। तो जब भी कोई मजबूत नेता आकर सब ठीक कर देने का वादा करे,
तो मिनोग की चेतावनी याद रखनी चाहिए कि ये रास्ता अक्सर राजनीति को खत्म करके तानाशाही की तरफ ले जाता है।
तीसरा थीम, विचारधारा राजनीति की दुश्मन है।
सुनने में आकर्षक लग सकती हैं सरल जवाब, सुनहरे भविष्य का वादा,
लेकिन मिनोग कहते हैं कि ये राजनीति के मूल स्वभाव यानी समझौते और लेन देन को नष्ट कर देती हैं।
ये हर मसले को आर पार की लड़ाई बना देती हैं।
इसलिए बड़े बड़े वादों और काल्पनिक स्वर्ग के नक्शों पर शक करना एक समझदार राजनीतिक रवैया है।
अपने आसपास ही देखिए कितनी बार राजनीतिक बहसों को धर्म युद्ध की तरह पेश किया जाता है।
हाँ, जहाँ समझौते की बात करना भी पाप लगे।
और चौथा थीम, परंपराओं, संस्थाओं और व्यवहारिक समझ का महत्व।
मिनोग किसी किताबी सिद्धांत या क्रांतिकारी बदलाव के सपने पर ज्यादा भरोसा नहीं करते।
नहीं, वो स्थापित परंपराओं, धीरे धीरे विकसित हुई संस्थाओं और लोगों की व्यवहारिक समझ यानी राजनीतिक परिपक्वता को ज्यादा तरजीह देते हैं।
उनके लिए राजनीति एक कला है, अनुभव से सीखी जाती है, कोई साइंस लैब का प्रयोग नहीं।
सही, इसीलिए हमें संसद की कार्रवाई या अदालतों के कामकाज जैसे उबाऊ लगने वाले ढांचों की कद्र करनी चाहिए।
ये धीमे जरूर लग सकते हैं,
पर ये हमें जल्दबाजी और मनमानी से बचाते हैं।
मिनोक के कुछ विचारों को अगर हम उनके सार के रूप में देखें तो वो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला विचार,
राजनीति आजाद लोगों की गतिविधि है जो कानून के दायरे में रहकर अपनी असहमतियों को संभालते हैं। ये कोई अंतिम हल नहीं देती बल्कि लगातार चलने वाली समझौतों की एक प्रक्रिया है।
हम तो अक्सर राजनीति से उम्मीद करते हैं कि वो सारी समस्याएं हमेशा के लिए सुलझा दे। ये नजरिया उससे कितना अलग है।
हाँ, और दूसरा विचार देखिए, अगर आप राजनीति को पसंद नहीं करते तो इसका एकमात्र विकल्प तानाशाही है।
और ये सोचना कि राजनीति की जगह कोई और बेहतर चीज ले सकती है, जैसे एक्सपर्ट्स का राज या कोई खास विचारधारा या नैतिक पवित्रता, ये एक खतरनाक वहम है।
खुद ही हमें तानाशाही से बचाती है।
इसे हटाने की कोई भी कोशिश आजादी को ही खत्म कर देगी।
तीसरा विचार, विचारधारा राजनीति को एक तरह का सेक्युलर धर्म बना देती है।
वो हर चीज को राजनीतिक रंग दे देती है और दुनिया को हमारे वाले अच्छे और दूसरे वाले बुरे में बांट देती है।
ये प्रवृत्ति आज कहाँ नहीं दिखती, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हमारी रोज की बातचीत, हर जगह।
और चौथा विचार जो मुझे बहुत पसंद आया,
राजनीतिक समझदारी की शुरुआत इस बात को कबूल करने से होती है कि इंसान न तो फरिश्ते हैं न शैतान।
वो उससे कई ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हैं, अपनी पूरी अच्छाई बुराई के साथ।
हाँ, ये यथार्थवाद हमें सिखाता है कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो इंसानों की असलियत को ध्यान में रखें, ना कि किसी काल्पनिक आदर्श मानव के लिए।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
पहला तो ये कि हम अपनी बातचीत में फर्क करना सीख सकते हैं।
कब हम सच में एक दूसरे को समझने और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक तर्क।
और कब हम सिर्फ अपनी बात मनवाने या दूसरे को हराने पर तुले हैं, यानी वैचारिक तर्क।
कोशिश करें कि ऐसी भाषा से बचें जो लोगों को और बांटे।
दूसरा, मीडिया को थोड़ा शक की नजर से देखें। क्या हर खबर को किसी जंग की तरह पेश किया जा रहा है?
क्या हमेशा एक विलेन और एक हीरो बनाया जा रहा है?
याद रखें, ज्यादातर मसले बहुत उलझे हुए होते हैं जिनमें अलग अलग सही बातों के बीच संतुलन साधना होता है।
और हाँ, उन बोरिंग संस्थाओं, अदालतें, नियम, प्रक्रियाएं की अहमियत समझें।
वो इसी संतुलन को साधने में मदद करती हैं।
तीसरा, उन वादों से सावधान रहें जो धरती पर स्वर्ग उतार लाने का दावा करते हैं।
हाँ, जो नेता या आंदोलन कहे कि बस हमें चुन लो, सारी समस्याएं खत्म कर देंगे, उस पर शक करें।
बड़े क्रांतिकारी बदलावों के बजाय छोटे व्यावहारिक सुधारों पर ध्यान देना शायद ज्यादा समझदारी है।
हमारी पुरानी संस्थाओं और परंपराओं में जो पीढ़ियों का अनुभव जमा है उसे एकदम से रद्दी की टोकरी में ना फेंके।
और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने। ये समझें कि राजनीति एक नाजुक चीज है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
इसमें हिस्सा लेने के लिए सिर्फ जोश या गुस्सा काफी नहीं, समझ और जानकारी भी चाहिए।
सिर्फ तमाशा देखने वाले या किसी टीम के फैन बनने के बजाय एक जानकार भागीदार बने।
वही राजनीतिक परिपक्वता हासिल करने की कोशिश करें जिसकी बात मिनोक करते हैं।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही रहा कि राजनीति कोई मजबूरी या गंदगी नहीं, बल्कि एक इंसानी उपलब्धि है।
हाँ, एक ऐसी चीज जिसे बनाया गया है और जिसे लगातार बचाए रखने की जरूरत है।
और तानाशाही से इसका फर्क कितना बुनियादी है ये समझना बहुत जरूरी है।
और मुझे विचारधारा वाली बात ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, कैसे किसी आदर्श या संपूर्ण समाधान की तलाश हमें असल में उस आजादी और साथ रहने की संभावना से दूर ले जाती है जो राजनीति हमें देती है।
सही कहा।
राजनीति का मकसद शायद तनाव को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना है, रचनात्मक तरीके से।
ये मानना कि मतभेद तो हमेशा रहेंगे, शायद ज्यादा सुकून देने वाला नजरिया है।
हाँ, श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। मिनोक का सुझाव है कि राजनीति के लिए हमें अपूर्णता और असहमति को आजाद समाजों की सच्चाई मानकर स्वीकार करना होगा।
अगर हम ये नजरिया अपना ले बजाय इसके कि हम हमेशा पूरी एकता या अपनी विचारधारा की अंतिम जीत के पीछे भागते रहें, तो हमारे सार्वजनिक जीवन को देखने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।